ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण स्थिति में देखना चाहते हैं और खाली देखना ही नहीं चाहते। बाबा ने हम बच्चों के सम्मुख ऐसा उदाहरण छोड़ा है कि हर बच्चा इस संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका सहज ही जो उदाहरण थे वो स्वयं साकार बाबा थे। वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे भाग्यशाली हैं, केवल भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली कहें, क्योंकि हम सबने बाबा को पहचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने हम बच्चों को चुना है नई सृष्टि का अधिकारी बनाने के लिए। तो हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, साथ ही हम तो ये समझते हैं हमें कुछ और भी विशेष सौभाग्य मिला हुआ है। हम बच्चों ने साकार माता पिता की पालना ली है, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। लेकिन एक ऐसा सौभाग्य जो हम समझते हैं हमें ही प्राप्त हुआ है, वो है बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को देखने का, सम्मुख प्रैक्टिकल में अनुभव करने का। क्योंकि 17 और 18 जनवरी 1969 को जब बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति के बिल्कुल ही निकट से कर्मातीत अवस्था को लगभग प्राप्त कर लिया था, उन दो दिनों में हमें यहां मधुबन में रहने का सौभाग्य मिला। और उसके अंदर हमने जो देखा उसको हम आज खास आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है बाबा की तरह संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। हमें याद आता है कि पहले जब हम लोग ज्ञान में आए थे 1961 के अंत में, बाबा से मिलते थे, बाबा समय देते थे, हालचाल पूछते थे, पोता मेल देखते थे और काफी डायरेक्शन देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, हम अनुभव करते जा रहे थे कि बाबा सारा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी, बस उस समय की महत्ता को पहचानते हुए अपने पुरुषार्थ और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने में अधिक समय देते थे। और धीरे 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 सब तरफ से समेटते जा रहे थे। हम सब ने पढ़ा है कि बाबा को जब शुरू में साक्षात्कार हुए थे, अभी भी बहन जी बता रहे थे सूक्ष्म ब्रह्मा का, और बाबा को जब एक साक्षात्कार विशेष हुआ था कि ऊपर आकाश में सितारे सितारे हैं परम धाम में, वो सितारे नीचे आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, स्वर्ग की दुनिया है, खेल कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, चारों तरफ इतना सात्विक वातावरण है, और जब बाबा ये दुनिया देखने में बिल्कुल तल्लीन थे, उसी के अंदर खोए हुए थे साक्षात्कार में, तो बाबा के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। हम सभी ने पढ़ा है, क्या आवाज थी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ध्यान से नीचे उतरे, बस उसी में खो गए। कौन था, किसकी आवाज थी, कौन कह रहा था कि मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा ये दुनिया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अब बाबा इन्हीं विचारों में जब खोए रहते थे, तो धीरे धीरे बाबा को मार्ग स्पष्ट होता गया कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये नई सृष्टि का कारोबार करा रहे हैं और उनके द्वारा ये नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। बस जब से बाबा ने ये देखा और ये सुना, मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, तब से ही बाबा को अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जब सूक्ष्म वदनवासी ब्रह्मा का पाठ खुला, तब और भी कि बस जब ये लक्ष्य स्पष्ट हुआ, तो हम सबका स्लोगन है ना, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण होते हैं। तो लक्ष्य बुद्धि में स्पष्ट हुआ, तो लक्षण अपने आप आते चले गए, आते चले गए। तो बाबा की तरह हम भी सबको कर्मातीत अवस्था को पाना है, तो बुद्धि में बस ये लक्ष्य रहे। कौन सा लक्ष्य? मैं विजय माला का मणका, मैं विजयी रतन हूं। बाबा कलप पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप बना रहे हैं, कलप कलप आप बनाते रहेंगे। बाबा मैं वही आपकी कलप पहले वाली आत्मा हूं जो विजयी बनी थी, माला का मणका बनी थी, अष्ट रत्नों में आई। लक्ष्य जितना हमारा महान रहेगा, उतना हमारे अंदर लक्षण भी महान आते चले जाएंगे। तो पहला जीवन में एक ये रहे, और इसी कारण से तो देखो बाबा कितने समय में संपूर्ण बन गए, कितने वर्षों में, सिर्फ 33 वर्ष में। 1936 में ये ज्ञान शुरू हुआ और 1969 में जनवरी में तो बाबा संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत अवस्था को पा लिया। सिर्फ 33 वर्ष भी पूरा नहीं है, तो समझो 33 वर्ष आज हम सबके बीच में, हमें भी लगभग 50 वर्ष हो गए, बहुत हैं 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75 हम सब। लेकिन बाबा इतने कम समय में इसीलिए संपूर्ण बन गया कि बाबा अपने लक्ष्य को रोज रिवाइज करता था। कोई भी बात अगर रोज अपने जहन में लाई जाती है, रोज रिपीट की जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक अंग बन जाती है और ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी हमारे अंदर वो संस्कार भरने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। एक तो बाबा का ये, और इसीलिए ऐसे ही बाबा का पुरुषार्थ भी चला। आप सबने सुना होगा ना, यहाँ दो डायरियां भी रखी है, तो एक डायरी में तो बाबा ने ये किया पक्का, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, सुना है ना सबने। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है, बच्चा हो बच्चे, मनुष्य की बुद्धि कहाँ जा सकती है, पति में, पत्नी में, बच्चों में, बच्ची में, धन दौलत संबंधी, तो जहां जहां बुद्धि जा सकती है बाबा ने लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इतना पक्का हो गया बाबा को, हम देखते थे जब पहले बाबा से मिलते थे, बाबा हाथ बढ़, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, बस जैसे ही बाबा ने यूं हाथ फैलाया, चुंबक की तरह, बस जैसे चुंबक खींचता है, हम सब खींच के बाबा की बाह में आ जाते थे, मैग्नेटिक पुलिंग जैसे होती है ना। तो इतना बाबा ने आत्मा का भाव पक्का कर लिया था, बाबा जिसको भी देखता था विदेही हो जाते थे वो। हमने ये कई बार अनुभव किया, बस बाबा ने बाहें फैलाई, बाबा की गोदी में गए और बस अशरीरी हो गए। फिर कैसे शरीर में आते थे, क्योंकि पार्टी तो होती थी 8, 10, 15, 20 की, वहां में तो एट ए टाइम एक ही आएगा, तो बस आते थे, फिर थोड़ी देर तक उस विदेहीपन का आनंद लेते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपा गए, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे नीचे, ऐसे करके फिर जैसे हम अपने शरीर में अपने को लाने का प्रयास करते थे, आते थे, बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था। ये अलौकिक विधि थी बाबा से मिलने की। तो हम अपने को ये दूसरा ये चेक करते चले कि हम भी जिस किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, जिसको दृष्टि देते हैं, जैसे हमारे अंदर की भावना होती है, वैसे हम उसे विदेही बना देते हैं, भले थोड़े समय के लिए। अंत में कुछ एक दो वर्ष बाबा ऐसे स्थूल रीति से नहीं मिलते थे, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, पर जरा सी थोड़ी दृष्टि दी और ये दृष्टि वो ही काम करती थी, एकदम अशरीरी विदेही बना देती थी, जैसे स्थूल में जब बाबा को मिलते थे। तो अभी हम सब बच्चों का, क्योंकि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के वत्स हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पार्ट चला वो हम एक एक बच्चे के द्वारा वो पार्ट चलना है। तो हम भी अपने को ये चेक करते चले कि हम भी जिस आत्मा को भी दृष्टि देते हैं, हमारे कैसा लाइट का ऑरा है, हमारा कैसे हमारे वाइब्रेशन है, कैसी हमारी दृष्टि वृत्ति है, कि दूसरे को हम देह से न्यारा भले थोड़े समय के लिए भी उस स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। ये बाबा के कदम पर एक अगला कदम कि हम खुद जितना विदेही होंगे दूसरे को भी उसी विदेही स्थिति का तुरंत अनुभव करा सकेंगे। तो ये बाबा ने लिखकर पक्का किया, ये भी हम देखते चलें मैंने कितना पक्का किया है। थ्योरेटिकली तो हम सब जानते हैं, रोज मुरली में भी अनेक बार आता है, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे बाबा ने पक्का किया और अपना जीवन में लाया दृष्टि वृत्ति में, ऐसे कहां तक हमारा आया है। चौथी बात, बाबा ने यह भी कहा है रोज अपनी क्या करो, दरबार लगाओ। याद है किसकी दरबार लगाओ, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। रोज देखो ये कितना मेरे कंट्रोल में चलते हैं, मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा मंत्री है, बुद्धि सेनापति है, संस्कार सैनिक है। तो ये मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा राजा के कंट्रोल में है। राजा के कंट्रोल में अगर उसके सैनिक, उसका सेनापति, उसका मंत्री नहीं होगा तो वो बगावत कर देंगे, तो वो राजा ही क्या रहा। तो मैं आत्मा राजा हूं। बाबा कैसे दरबार लगाते थे, बहुत अच्छा, वो भी एक पत्र है। एक हमारे वरिष्ठ भ्राता होते थे दादा आनंद किशोर जी, उन्होंने उस पत्र का हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम लोगों को दिया था। क्या था पत्र में, गौर से सुनना आप। हम सब भी उस रीति से अपने मन को कंट्रोल करते हैं, बड़ा अच्छा बाबा ने विधि बताई। क्या कहा बाबा ने, बाबा अपने मन को एड्रेस कर रहे हैं, मन को पत्र लिख रहे हैं, हे मन तूने मुझे आज तक बहुत भटकाया है, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे अंडर में चलना चाहिए, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, तू शक्तिशाली हो गया, इसलिए तो जिधर जिधर जाता रहा मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागती रही, तूने मुझे वश में कर लिया, मैं कमजोर हो गया। पहले बाबा ने ये स्थिति लिखी है, फिर बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब तुझे मेरे अंडर चलना होगा, मेरे कंट्रोल में चलना होगा। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, और मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में अब मैं स्थित हो गया, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। इस तरह बाबा ने मन को ऑर्डर किया। हमारा गुलजार दादी जी भी जब क्लास कराते हैं इस बात को विशेष कहते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि दादी हम चाहते तो हैं ये शक्ति समय पर आए, लेकिन वो शक्ति आती नहीं समय पर। हमारा मन, हम चाहते हैं इधर ना भागे, लेकिन भाग जाता है। भक्ति में भी कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है। तो दादी उसका बड़ा अच्छा उत्तर बताते हैं गुलजार दादी जी कि ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने स्वमान में स्थित रहकर मन को ऑर्डर नहीं करते। जब हम अपने स्वमान में स्थित रहकर, अपनी पोजीशन में स्थित रहकर मन को ऑर्डर करेंगे, मन हमारी बात मानेगा। कोई भी ऑफिसर होता है गवर्नमेंट में भी, जब वो अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है, ऑर्डर करता है, सब उसकी बात मानते हैं, और जब वो सीट से उतर जाता है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, चला गया, नहीं है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो सीट पर नहीं है। ऐसे जब हम अपने सम्मान की सीट पर नहीं होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सहन शक्ति आए, निर्णय शक्ति आ जाए, मनन शक्ति आ जाए, लेकिन वो शक्ति समय पर पूर्ण रीति से नहीं आती जितना हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सम्मान में स्थित नहीं होते। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले यही पत्र मन को लिखा, और ऐसे ही पत्र बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ, मन की साथी बन गई, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। मैं भी तुम्हारे कहने पर पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपने स्वमान में स्थित हो गया। तो हम समय प्रति समय सारे दिन भर में अपने को ये भी चेक करते रहें, कोई परिस्थिति आई, कोई पेपर आया, मैं चाहता हूं उस परिस्थिति से बाहर निकलें, उस स्थिति पर विजय प्राप्त करें, तो सबसे पहले हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएं। और जैसे ही हम स्वमान की सीट पर स्थित होंगे, वो परिस्थिति अपने आप ही हल्की होकर के भाग जाएगी, क्योंकि बाबा उस समय बुद्धि को, मन और बुद्धि हमारे उसमें नहीं, बाबा के नियंत्रण में आ जाएंगे, और उस समय वो ही चीज टच होगी जो यथार्थ होगी, समय पर होने वाली होगी, जो अपने सही समय पर सही निर्णय वो बुद्धि में आए, और उसमें हमारी विजय समाई हुई है। तो इसीलिए बाबा कहता है रोज अपनी मन बुद्धि संस्कारों की दरबार लगाओ सोने से पहले, और बाबा ये करता था। और इसीलिए बाबा बस पिछले कुछ वर्षों से बाबा मन के लिए कौन सा हमें होमवर्क दिया हुआ है बाबा ने, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीते। इसीलिए मन को ही कहा है सब, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी इसीलिए क्या कहा है, मन मना भव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो विजय का आधार ही है मन को अपने नियंत्रण में करना, मन को जीतना। उसका प्रमाण क्या है कि हम मन को जीतते जा रहे हैं? क्या प्रमाण है उसका? बड़ा सहज है, क्योंकि कोई भी चीज होती है हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। तबीयत खराब होती है, थर्मोमीटर लगाया, भाई बुखार है, इतना है, 100 है, 1 है, तो इसका मतलब तबीयत ठीक नहीं है। कुछ शरीर में हलचल है, ब्लड प्रेशर नापा, लो है या हाई है, ठीक नहीं है, दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक हो जाता है। तो हर चीज का मेजरमेंट होना चाहिए। अगर मेजरमेंट नहीं है तो हम यही समझेंगे, चलो हम ज्ञान में चल ही रहे हैं, रोज मुरली भी सुनते हैं, रोज योग भी लगाते हैं, बाबा के नियम मर्यादाएं भी जो है वो भी हम पालन करते हैं। लेकिन देखना ये है कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति वैसी है जैसे बाबा चाहता है, और वो तभी होगा जब हम टाइम टू टाइम अपना ऑडिट करते रहेंगे, अपनी चेकिंग करते रहेंगे। अगर दिशा में कहीं गलती है उस दिशा को ठीक करेंगे, जिससे राइट डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चलती रहे और हम मंजिल को प्राप्त कर लें। तो एक तो ये मन, मन का आधार यही है चेक करना। कैसे? कि मन जितना जितना हमारे कंट्रोल में आता जाएगा ना, उतना उतना मन का काम क्या है? संकल्प करना, इच्छा करना। तो जितना जितना मन को हम जीतते जाएंगे, उतना उतना इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाएंगे। तो बात हो रही थी मन की। तो हमने देखा कि जब पहले हम बाबा से मिला करते थे अर्ली 60s में, 62, 63, 64, 65, तो बाबा समय देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बाबा के पास जाते थे, हम बाबा से ये पूछेंगे, तो बस थोड़ा सा बाबा को सुनाया, एक लाइन, दो लाइन, एक दो मिनट, बस बाबा कहते बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने कहना शुरू ही किया है बोलना, तो बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा उस बात को समझ करके समाधान दे देते थे। तो एक तो समेटते, लेकिन वंडर तो हमने ये देखा 17 और 18 जनवरी 1969 को जब बाबा कर्मातीत अवस्था में थे, तो हम बाबा से लगभग 6-7 बार मिले इन 2 दिनों में। तो बस हमेशा जाते थे बाबा से ये पूछेंगे, व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात, कोई सेवा की बात, क्लास की बात आदि। जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा को जरा सा दृष्टि दिया, बाबा ने बस, बाबा कहता अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी बाबा मन के अंदर का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। एक बार हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार, जब अनेक बार ऐसा हुआ कि जो पूछने जाते थे एक अक्षर भी नहीं बोला, मन में क्या चल रहा है तुरंत बाबा ने बोला, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा। बड़ा आश्चर्य होता था। बाद में एक बार जब दीदी जी, मनमोहनी दीदी जी से पूछा कि दीदी ये कैसे होता है, बाबा एकदम हमारे बिना कहे ही मन की बात परख लेता है, तो दीदी ने बड़ा अच्छा बताया। दीदी ने कहा देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, संपूर्ण स्थिति के, तो वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती। और जब अपनी इच्छा नहीं रहती तो दूसरे की इच्छा को वो तुरंत ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। यही देवताओं के लक्षण हैं, यही महान आत्माओं के लक्षण हैं। और ये बाबा अभी जैसे उस स्थिति को प्राप्त है, और जब इस बात को मन के भावों को पढ़ लेते हैं, जैसे उदाहरण बड़ा अच्छा बताया, पानी होता है ना, पानी निर्मल होगा, साफ होगा, पानी में कोई लहरें नहीं होंगी, हम अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहेंगे उसमें तो हमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंक दो, लहरें पैदा होने लगे तो क्या अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बस यही बात मन की है, संकल्प जो है ना, मन का एक संकल्प भी एक छोटे पत्थर के समान है। बस कुछ भी एक कोई भी विचार आया, कोई बात, तो वो लहरें पैदा होती हैं, तो न हम अपने संकल्पों पर नियंत्रण कर सकते हैं न ही दूसरे के, क्योंकि दूसरे के संकल्प और हमारे संकल्प मिक्स हो जाएंगे। अगर जब तक हम दूसरे की इच्छा को जान ही नहीं सकेंगे, हम उसकी इच्छा को पूर्ण कैसे कर सकेंगे? इसलिए अभी आवश्यकता यही है कि जितना हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं की भी अविद्या होती जाए, होते चले जाएंगे, उतना हमारे सामने जो भक्त आत्माएं आएंगी, अनेक आत्माएं अभी आने वाली हैं हमारे सम्मुख अलग अलग इच्छा लेके, तब हम उनकी इच्छाओं को, ऐसा समय नहीं रहेगा कि कोई आके अपनी इच्छा कहे कि भाई मैं देवी का भक्त हूं, मुझे देवी का साक्षात्कार कराओ, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं राम का हूं, मैं हनुमान का हूं। नहीं, हमारे सम्मुख लोग आएंगे अपनी अपनी इच्छाएं लेके, कोई साक्षात्कार की, कोई लौकिक इच्छा, कोई अलौकिक, अलग अलग इच्छाएं लेके, और हम उनकी इच्छाओं को तभी पूर्ण कर सकेंगे। बाबा हमारे द्वारा कराता है, साक्षात्कार की चाबी थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया था ना, बाबा सब कुछ बच्चों को दे देता है, सिर्फ एक चाबी अपने पास रखता है, याद है ना, साक्षात्कार की। तो बाबा हमारे द्वारा साक्षात्कार उन आत्माओं को कराएगा जो जैसी इच्छा लेके आया होगा। इसीलिए बाबा ने कहा है, अब क्या करो, ऐसा आपका स्वरूप होना चाहिए, जिसीलिए बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, उसकी अभ्यास ऐसा हो जैसे अग्नि में कोई चीज डाल देते हैं उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, अग्नि में जाने के बाद रूप, ऐसे ही आपके सम्मुख रोती हुई आत्मा आए उसका रूप बदल जाए, वो हंसती हुई जाए, आपके सामने अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई जाए, आपके सम्मुख ऐसे ऐसे निराश व्यक्ति आएंगे, जीवन से निराश होते हो गए होंगे, आपके सम्मुख आते ही उनका रूप परिवर्तन हो जाए, आशाएं उनके जीवन में हिलोरे ले लेने लगे और आशाओं के सागर में लहराते हुए वो चले जाए। और ये तब होगा जब हम खुद इच्छा, हमारे अंदर ही कोई इच्छा हुई, भले शुभ इच्छा भी हो, बाबा हमारे पति का बुद्धि का ताला खुले, ये हमारे पास ये चीज हो, मेरा बच्ची ज्ञान में आ जाए, बच्चे का ये हो जाए, कोई भी, चलो लौकिक इच्छा ना सही, अलौकिक भी इच्छा हो, सेवा केंद्र की वृद्धि हो, लेकिन बाबा कहता है कोई भी इच्छा क्या नहीं बनने देती, अच्छा नहीं बनने देती। तो इसीलिए अभी हम बिल्कुल इच्छा मात्र अविद्या, बाबा को हम देखते थे, बाबा कहते थे बच्चे ये करो, ऐसा चित्र बनाओ, ऐसा करो, नहीं होता था, बाबा कहता था बच्चे, बाबा समझता है अर्जुन अभी टाइम पड़ा है, अभी समय नहीं आया है उस बात को होने का, इसीलिए बच्चों को वो टच नहीं होती है और बच्चे उस बात को यथार्थ रीति से न समझ कर के प्रैक्टिकल में नहीं ला पा रहे। तो बाबा भी ड्रामा के पट्टे पर इतना खड़ा हुआ था, पक्का था ऐसा, ये मैं भी अपने को चेक करता चलूं कि मैं भी सदा इतने, जितना हम ड्रामा के पट्टे पर होंगे ना उतना ही हम खुशी में लहराते चलेंगे। बाबा को हम देखते थे, हाँ बाबा हंसी में कहता था, अब बाबा की उम्र भी इतनी थी 92-93 ईयर्स की, 93 साल की, तो बाबा को कई बार खांसी भी आती थी बहुत, हाँ तो बाबा हंसी में कहता था कि मैं शिव बाबा को कहता हूँ, बाबा मेरी ये जो सखी है ना, ये सखी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है, इस सखी से मेरा पिंड छुड़ाओ। कौन सी सखी? खांसी। तो बस बाबा देखो उसको भी कितना स्पोर्टिंगली, कितना हंसी में लेता था। तो जब मैं शिव बाबा को ये कहता हूँ बाबा इस सखी से मेरा पिंड छुड़ाओ, तो बाबा क्या कहता था शिव बाबा, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम ही जानो, तुम्हें हिसाब किताब चुकतू करना ही है, कर्मों का हर एक का हिसाब है, ये तुम्हें चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा ने क्या विधि अपनाई हुई थी? हाँ, कई बार बाबा को खांसी आती थी, खांसी आते आते आंख भी जैसे गीली सी होने लगती थी, और बस दूसरे ही क्षण बाबा फिर से देखो अपने ओरिजिनल स्वरूप में। बाबा के हिस्ट्री हॉल है, वहां कृष्ण का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का रखा हुआ है। तो बस बाबा कहता था कि देखो बच्चे, अभी बाबा को पुराना शरीर है, ये छींची शरीर है, इस पुराने शरीर में कितना व्याधियां होती हैं, लेकिन कल बाबा जाके ये बनेगा, कृष्ण विष्णु बनेगा। ओ बच्चों को खूब खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, बच्चों को इतना खुशी में लहराना चाहिए कि गम भूल जाए। बस बच्चे मालूम है तुम्हें खग्गी कैसे मारते हैं? हाँ मालूम है, बाबा कहता था। तो एक बार ऐसे ही बाबा ने पूछा, हम भी बैठे हुए थे, बाबा ने पूछा क्लास में किसी ने, कहा नहीं बच्चे हमें नहीं मालूम, नहीं बाबा हमें नहीं मालूम। तो बाबा ने, अरे बच्चे नहीं मालूम, देखो बाबा बताता है। बाबा ने बताया, हाँ ऐसा जब खुशी हो ना, वो कल मैं जाके ऐसे बाबा ना ये खग्गियां मारनी, ये सिंधी हो, इतनी खुशी हो, कल मैं जाके ये बनूंगा, विष्णु कृष्ण बनूंगा, विश्व महाराजन बनूंगा, आज भले ये खांसी है, ये व्याधि है, शरीर में ये तकलीफ है, बस एक क्षण ये होता था, दूसरे क्षण बाबा खुशी के सागर में लहराने लगता था। ये प्रैक्टिकल शिक्षा हम सब बच्चों के लिए, हम सभी के सामने पेपर आते हैं, शरीर के पेपर आएंगे, संबंध के आएंगे, तन मन धन हर एक चीज के पेपर तो आते ही हैं, इस समस्याओं के संसार में रह रहे हैं, लेकिन खुशी में बस बाबा ऐसा करता था, देख करके अपना भी गम हो जाता था ना, अगर कोई वो भूल जाता था। बाबा यही चाहता अभी हम बच्चों से, हमारे चेहरे पर ऐसा खुशी रहे। हा? बड़ा अच्छा किसी ने कहा भी है, फूल जैसा बनो, बाबा ने भी कहा था ना। अभी बाबा हर बच्चे को क्या चाहता है, टेंशन फ्री देखना चाहता है, तनाव मुक्त देखना चाहता है, और उसके लिए बाबा ने दो फूल का उदाहरण दिया था, कमल फूल समान बनो और गुलाब फूल समान। हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है कमल फूल से, बस जब से हम ब्राह्मण बनते हैं हमें उदाहरण दिया जाता है, कमल फूल की तरह रहो, घर गृहस्थी में रहो, कीचड़ में रहो, कीचड़ से न्यारे रहो, तो वहां से तो ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ, लेकिन संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का प्रतीक है गुलाब का फूल। कमल के फूल से शुरू होकर गुलाब के फूल तक जाना है। गुलाब के फूल में क्या विशेषता होती है? गुलाब का फूल देखो होता है बीच में जो वो होता है पेडल, उसके साथ वो लगा रहता है, सब पंखड़ियां अलग अलग होती हैं, एक थोड़ा गुलाब के फूल को जरा ऐसे हिलाओ सब पंखड़ियां झड़ जाएंगी, किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बस बाबा यही चाहता है, बच्चे आप सब गुलाब के फूल की तरह बनो, भले रहो परिवार में यहां, लेकिन किसी के साथ ना कोई भी अंत में खींचे नहीं, जरा सा बुलावा आए, कोई परिस्थिति है, बस हम चले बाबा, ऐसा बाबा चाहता है फूल बनो। इसी को शायद किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, हा? खुश रहो, मुस्कुराते रहो। क्या कहा है किसी ने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, बड़ा सहज है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में जीत कर तो हर एक कोई खुश होता है, जीत है, लेकिन ब्यूटी तभी है, विक्ट्री तभी है, विजय तभी है, देखने में हमें लगे हमारी हार हुई, अपमान हुआ, हम लक्ष्य को नहीं हासिल कर सके, लेकिन हार कर भी चेहरे की मुस्कुराहट गायब ना हो, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी। और यही बाबा का देखते थे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती थी, बच्चे कोई समाचार सुनाते थे, हमें याद है एक बार कलकत्ता में प्रदर्शनी लगाई थी और वहां आर्य समाजियों ने आग लगाई थी, बाबा को समाचार आया और हमारे बड़े पुराने पुराने वकील भाई, उन्होंने बहुत कहा, बाबा हमारे पास सारे प्रमाण हैं, फोटो हैं, हम केस करेंगे तो ये बच के ही जा सकते हैं, 100% हम जीतेंगे। बाबा ने क्या कहा, नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चों पर केस थोड़ी कर सकता है, बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है उन्होंने क्या किया है, अज्ञानी है, छोटा बच्चा होता है, अगर कोई बात करता है उसको सजा थोड़ी देते हैं, ये बच्चे अज्ञानी, उन्हें क्या मालूम कि भगवान के काम में उन्होंने ये बाधा डाली है, नहीं बाप ये नहीं कर सकता। हाँ आगे से तुम सावधानी रखो, इंश्योरेंस कराओ चित्रों का, पंडाल का, आदि आदि, लेकिन बाप अपने बच्चों पर कभी केस, ये महानता का लक्षण है। तो बाबा के हर चीज में ये महानता झलकती थी, प्रैक्टिकल में इतनी बड़े से बड़ी बात हो जाती थी, बस बाबा कभी भी ना पब्लिक में किसी का शिक्षा नहीं, इसीलिए कहा जाता है बुला करके बाबा शिक्षा देते थे प्राइवेट में और प्रेस करते थे पब्लिक में, किसी को ना कि बस हमें याद है बाबा के बाद बाबा को देखा, मम्मा को, दादियों को देखा, किसी भी भाई से यज्ञ इतना बड़ा है, कोई गलती हो जाती है, कोई नुकसान हुआ, ऐसा नहीं तुरंत ही जैसे हम लोग होते हैं कोई बात हुई तुरंत आवेश में आ जाते हैं, क्रोध आ गया या कोई शिक्षा दी, नहीं, कोई बात हुई बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, दादियां बुलाएंगी, बाबा बुलाते थे, बुला के उसे, बच्चे देखो तुमने वो सेवा करी, कितना अच्छी सेवा, पुरानी जिसमें उसने बहुत सफलता हासिल की है, यज्ञ का फायदा किया पहले, उस बात को उसे याद दिलाते थे, देखो तुमने वो किया कितना यज्ञ को फायदा हुआ, बाबा तुम्हारा एहसानमंद है, तुमने ये किया देखो कितनी आत्माओं को संदेश मिला, ऐसे पहले उसका मानसिक स्तर ऊंचा करके जिससे कि वो हर परिस्थिति के लिए जैसे तैयार हो जाता था और बहुत खुश नुमा स्थिति में आ जाता था, फिर बाबा थोड़ा सा बता, देखो बच्चे ये किया, इसमें जरा सा ये बात हुई, इसके बारे में क्या विचार, बाबा को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वो खुद ही अपने अंदर रियलाइज करके, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आगे से मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बहुत खुद ही बाबा के सम्मुख झुक जाता था। आज आवश्यकता इसी बात की है, हम जितना जितना दूसरों को क्षमा करते चलेंगे, ये क्षमा जो है महावीरता का गुण है, महानता है। बड़ा अच्छा इसके लिए भी कहा है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, महारथी होगा, वो क्षमा कर पाएगा। आज हम अपने को देखे हैं कि किसी की कोई भी बात मुझे चुभती तो नहीं रहती है, मैं उसे क्षमा कर देता हूं, एक बार क्षमा कर देंगे वो बात कभी याद नहीं आएगी, बदला लेने की भावना नहीं आएगी, उसको पाठ पढ़ाने की बात नहीं आएगी, कुछ नहीं, हमने क्षमा कर दिया। अब बाबा का यही था, इतना बड़ा यज्ञ, कोई गलती नुकसान कुछ भी होता था, बाबा अपने प्यार से उसे शिक्षा देता था, अपनी पोजीशन से नहीं, प्यार से। हर एक को लगना चाहिए कि बाबा से हर एक को यह लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। आज हर एक को यह लगना चाहिए हमसे कि ये मुझे जितना स्नेह, प्यार, आदर, सत्कार, सम्मान देते हैं, इतना कोई नहीं देता, तो उसके मन में हमारे लिए सत्कार सम्मान की भावना आएगी। और इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, तुम हर एक बच्चे को एक एक को सर्टिफिकेट लेने हैं, अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट जो बाबा हम बच्चों को कहता रहा। और क्या है साथ में, एक बाबा को ये देखते थे बाबा से जब पार्टी मिलने आ, एक एक अभी भी बाबा ने कहा है ना, पिछले दो सीजन से बाबा कह रहा है, वैसे तो अनेक खजाने हैं लेकिन कौन से दो खजाने खास तुम बच्चों को ख्याल रखने हैं, कौन से दो खजाने, हाँ बोलो, समय और संकल्प। अब बाबा उसकी मूर्ति था। हम सोचते हैं चलो योग होगा, आधा घंटा योग करेंगे, पांच मिनट दो मिनट मिलता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाबा का कितना ध्यान था देखो। बताते हैं जैसे पार्टियां मिलने आती हैं, ऐसी बाबा के साथ जिनने भी पार्टी आती थी, टाइम दे दिया जाता था कि भाई 10 बजे ये कलकत्ता पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बंगाल का पार्टी मिलेगा अलग, ये बम्बई का पार्टी 11 बजे, 11:30 बजे गुजरात का, आदि आदि हर आधा आधा घंटे बाद टाइम दे दिया जाता था, पार्टियां मिलती थी। एक पार्टी मिलके गई, मिली, दूसरी पार्टी में टाइम होता था थोड़ा सा, बस बाबा जो है ना, जैसी वो पार्टी गई, बाबा एक सेकंड में यहां शरीर में, एक सेकंड में ही शरीर से अलग न्यारा। उस समय को सफल करता था बाबा, 5 मिनट भी समय मिला, 3 मिनट भी मिला, और उसका पहचान क्या होती थी कि जैसे दूसरी पार्टी आई, ब्राह्मणी पार्टी लेके आई 10:30 बजे, बाबा बस ऐसे आंख खुली हुई है, बैठा हुआ है, लेकिन इस शरीर से न्यारा होके, ब्राह्मणी आई, पार्टी आई, बस बाबा अपने में खोया हुआ। ब्राह्मणी आके, टीचर आके बोलती थी बाबा बाबा, फिर बाबा को जैसे जर्क सा लगता था, हैं बच्ची, अच्छा अच्छा तुम पार्टी लेके आई हो, आओ। तो जैसे बाबा स्थूल रीति से तो यहां होता था, लेकिन सूक्ष्म रीति से बाबा धीरे से न्यारा होता था। उसके बाद बाबा से आते थे, पार्टी मिलते थे, तो बाबा को जैसे एक जर्क जैसा ना लगता था, कभी कोई ध्यान में नहीं होता था बाबा, आंख खुली होती थी, लेकिन यहां होते भी बाबा जैसे न्यारा। जो बाबा ने कहा 5 स्थितियों का वर्णन, उसके अंदर हम रमण करते रहे अलग अलग, लेकिन मानसिक रूप से जैसे हम इस देह से न्यारे रहे। एक बाबा का ये प्रैक्टिकल में देखने को मिलता था। हम भी अपने को देखें कि मुझे देह में आने का मेहनत लगती है या देह से न्यारा होने में मेहनत लगती है, एक प्रैक्टिकल में ये उदाहरण देखते थे। और साथ में क्या हमें याद है, 18 जनवरी रात्रि क्लास हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल में बाबा आए, क्लास कराया। उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराया था, 18 जनवरी 1969 सुबह बाबा आए, योग कराया सबको, और योग करा के फिर बाबा चले गए मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के। रात्रि क्लास में बाबा आए, हम लोग सब सामने बैठे हुए थे बाबा के, और बाबा ने आके क्लास कराई। तो देखो कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण, हम लोग क्लास सुन रहे हैं, बाबा क्लास करा रहा है, क्लास सुनते सुनते ही हमें एकाएक एक संकल्प आया। क्या संकल्प आया, अभी आप सब भी हो ना इस हॉल में भी, जब बाबा आते हैं तो बाबा मुरली चलाते हैं, सबको टोली मिल भी जाती है, दृष्टि भी सबको मिल जाती है, सब कुछ होता है, फिर भी सूक्ष्म में मन में इच्छा होती है, क्या ही अच्छा हो अगर हमें स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए, क्या ही अच्छा हो बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, कभी कभी होता है ना। और वो तो बचपन के दिन थे, साकार में बाबा होते थे, सुनते सुनते ही हमें एक संकल्प आया, बाबा कुछ मेरे लिए बोले। बस मन में संकल्प ही आया कि बाबा पुरुषार्थ के हमारे लिए बोले, और वो तो कम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्मा। जैसे ही मन में संकल्प आया, कुछ सेकंड में ही बाबा ने नाम लेकर के बस कुछ महावाक्य ऐसे हमारे लिए उच्चार दिए जो हमारे जीवन के लिए सदाकाल के लिए ना एक प्रेरणा स्रोत बन गया। दास बाबा ने कहा कि बस ये बच्चा है, बहुत अच्छा है, कभी मीठा है बहुत, किसी की निंदा नहीं करेंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे ही बाबा ने ये हमारे मन में संकल्प आया, बाबा ने उस बात को उच्चार दिया। ये ही पार्ट हम बच्चों के द्वारा अंत में चलना है। जब भक्त आत्माएं आएंगी अनेक इच्छाएं लेकर के हमारे द्वारा, बाबा जैसी उस आत्मा को इच्छा होगी वैसा साक्षात्कार कराएगा। आपने किताब में पढ़ा होगा ना, यज्ञ के शुरू में जब ज्ञान शुरू हुआ तो परिवार आते थे, कुछ परिवार के सब सदस्य नहीं आते थे। तो एक बार एक सरदार जी आए, पढ़ा होगा इतिहास में, उनके परिवार से कुछ लोग आते थे, सरदार जी नहीं आते थे, तो वो छुरा लेकर आए थे, आज मैं बाबा को मार दूंगा। तो बस बाहर आए, यज्ञ के शुरू की बात है, टीचर्स बहन से छुट्टी लेकर के गए कि मुझे बाबा से मिलना है। बहन भी अपना इनोसेंट भाव से बाबा से मिला के चली गई और बहन अपने काम में लग गई। और जब उसने देखा सरदार जी ने अकेला हूं मैं, तो उसने छुरा निकाला और बाबा पर वार करने जा ही रहा था, तो क्या हुआ, उसे साक्षात्कार हुआ। किसका साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। अब देखो, बाबा आत्मा तो कृष्ण की, नारायण की आत्मा, सबको बाबा से कृष्ण का, नारायण का, स्वर्ग का, सतयुग का साक्षात्कार होता था, सब उसमें खेल करते थे। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा उन सरदार जी को जो साक्षात्कार कराया वो गुरु नानक देव का। क्यों कराया? क्योंकि उन सरदार जी की भावना गुरु नानक देव में थी, कृष्ण में नहीं। तो जैसे उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ, वो एकदम भौचक्का रह गया और उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। अरे गुरु जी, मैं क्या करने जा रहा था, मैं आपको हत्या करने जा रहा था। ओहो, मुझसे तो बड़ा पापी कोई नहीं, गुरु जी मुझे माफ करो। बहुत रोने लगा, छुरा निकाल के बाबा के पैर के पास रख दिया, बहुत माफी मांग करके वो फिर वहां से चला गया। तो देखो, बाबा भी अंत में हमारे द्वारा हर आत्मा की वो इच्छा पूर्ण करेगा जो इच्छा लेके वो आत्मा आई हुई है। तो एक तो हमें इसके लिए अपना तन और मन, ये दोनों को पवित्र और शुद्ध रखना है। न हमारे तन के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जो अशुद्धि का हो, न हमारा मन कोई अशुद्ध सोचे। तो बाबा देखो क्या पार्ट कराता है। तो मैं 18 जनवरी की बात कह रहा था कि 18 जनवरी को ऐसे बाबा मुरली चला रहे थे और बस उस दिन एक विशेषता थी कि बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई पूरी मुरली में। नहीं तो इतनी बड़ी आयु और जनवरी का ठंडी का मौसम, कई बार बाबा को बीच बीच में खांसी आती थी, लेकिन 18 जनवरी की आप टेप में मुरली सुनो, एक बार भी खांसी भी नहीं आई। क्यों? वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो शरीर के कर्म भोग के ऊपर ना हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। और जब योग बल संपूर्ण रीति से विजयी बन जाता है तो शरीर के कोई भी कर्म भोग फिर हमें यातना नहीं देते। उस दिन की मुरली की ये विशेषता थी। और उसके बाद बाबा उठे, उठ करके बाबा खड़े हुए, एक कदम चले, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। बस एक एक बच्चे को दृष्टि दे और साथ साथ बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, बार बार बाबा की दृष्टि प्रकाशमणि दादी पर जाती थी, उनको दृष्टि देते थे। फिर बाबा दो कदम चले, फिर रुक गए, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। उस दिन बाबा को ये हो, आज ये तो मेरा अंतिम साकार में मिलन है, इसके बाद इस कल्प में तो बच्चों के साथ मेरा मिलन होगा ही नहीं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को बाबा प्राप्त। इसीलिए बाबा को बार बार ये होता था, आज मैं बच्चों को दृष्टि से भरपूर कर दू। खूब बाबा ने बच्चों को अच्छी तरीके से दृष्टि दी, प्रेम से। फिर बाबा गए और दरवाजे के पास जाके बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, याद प्यार, नमस्ते कहते थे। अभी तक टेप में वो महावाक्य हैं अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा चले गए। तो देखो, हम सबको भी जब अगर हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमें आभास हो जाएगा, हाँ भीष्म पितामह की तरह, बस अब मैं ये पुराना छींची शरीर छोड़ रहा हूँ, हाँ बाबा मैं आया, आपके पास आया। और उसका प्रतीक क्या है, जैसे ही बाबा शरीर छोड़ के गए अपने कमरे में, और फिर बस दादी के हाथ में हाथ बाबा ने विदाई ली, शरीर छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद हुआ असली। क्या आश्चर्य हुआ, 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, रात को 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 को सारा दिन रखा रहा, 19 की रात को रहा, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लगभग 65-70 घंटे तक बाबा का शरीर रहा, लेकिन बाबा के शरीर में कहीं भी ना कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल नहीं लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ और शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं। जब बाबा को हम लोगों ने 21 तारीख को स्नान भी कराया तो बाबा का शरीर बिल्कुल ऐसे ही फ्लेक्सिबल था, जरा भी शरीर के अंदर कोई, हमने उसके बाद बहुत डॉक्टरों से पूछा, बहुत वैज्ञानिकों से पूछा, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर आत्मा जब छोड़ के चली जाती है शरीर कुछ घंटों में ही अकड़ जाता है। लेकिन इतना 3 दिन तक रखा रहा बिल्कुल वैसा ही और बिल्कुल चमकता हुआ, न शरीर में कोई दुर्गंध, न कोई कालापन आया, और बस ऐसा लगता था बाबा लेटा हुआ है हमेशा की तरह। बाबा, बस बाबा को बुलाएंगे, बाबा, बाबा उठेगा, हाथ फैला के कहेगा आओ बच्चे, आओ बच्चे, जैसे बाबा हमेशा कहता था, और बिल्कुल ऐसे ही चमकता शरीर। ये है प्रकृति के तत्वों पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों को भी बाबा ने इतना पावन बना लिया था, ये शरीर भी 5 तत्वों का ही तो बना है, तो 5 तत्वों को भी इतना पावन बना लिया था योग बल से, इन 5 तत्वों ने भी अंत समय तक पूरा बाबा का साथ दिया, शरीर में जरा भी कहीं कोई स्टिफनेस नहीं, कोई कालापन नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। यही बाबा अब हम बच्चों से भी चाहता है कि एक एक तत्व को भी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन एक एक तत्व को भी हम इतना शुद्ध, पावन, निर्मल कर दें योग बल से, कि बस अंत तक ये तत्व हमारा साथी बन जाए। ये हमारे जीवन के लिए, और ये जितना जितना हमारे साथी बनते रहेंगे ना, उतना उतना हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते चलेंगे। बाबा ने कल परसों भी बोला ना, आजकल भी, कि जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ती जाएगी। तो बस इन तत्वों से भी हमें हरेक से ये सीखना है, एक एक तत्व से, इन तत्वों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, और वो विजय तभी प्राप्त कर सकेंगे जब इन तत्वों को हम अपना साथी बना लेंगे। तो आइए आज हम सब मिलके यही संकल्प करें कि ब्रह्मा बाबा की तरह हम सब बच्चों को भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके केवल अपनी आत्मा को ही पवित्र नहीं बनाना, सृष्टि की समस्त आत्माओं को भी पवित्र बनाना है, योगदान देना है, और प्रकृति के इन 5 तत्वों को भी ना पावन करके बस हम सबको भी बाबा के साथ साथ वापस अपने स्वीट साइलेंस होम चलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।